ओम अज्ञानति विनन्दस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदानमियं ददाति सर्वदान्तिकम् श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द हरे सेवा ये आज का थीम है और कल कुछ आज इस कार्यक्रम के प्रायोजक दोनों कुछ इमरजेंसी आपातकालीन संकट में आए थे तो मैंने सोचा वैष्णव सेवा का थीम है तो उसको निभाना चाहिए इसलिए आज यहां पर किसी और के होने के बदले में मैं बैठा हूं। तो उम्मीद है कि मेरी इस सेवा से आप लोग प्रसन्न होंगे, ये भगवान ही जानते हैं। कुछ साल पहले राधानाथ स्वामी महाराज ने अचानक अमेरिका से फोन किया क्योंकि उन्हें शास्त्र में ऐसा एक विधान मिला जिसमें उन्होंने कहा कि इस युग के दो धर्म है, एक धर्म है नाम जप और दूसरा धर्म है वैष्णव सेवा। तो बहुत ही आनंद में थे राधानाथ महाराज जी। उन्होंने कहा कि जितना महत्वपूर्ण भगवान के नाम का जप है, हरिनाम संकीर्तन है, उतना ही महत्वपूर्ण वैष्णव सेवा है और ये इस युग का प्रधान धर्म है। श्रीमद् भागवत में पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में बहुत सारे श्लोक हैं, 16वें श्लोक से लेकर 8-9 श्लोक हैं, उसका संक्षेप में सार इस प्रकार से है कि भगवान के भक्तों का जो भक्त भगवान के भक्त जो है वो जो पूर्णता से किसी भी विकार से या किसी भी दोष से मुक्त है, ऐसे भक्तों की सेवा करने से महान सेवा हो जाती है और ऐसी सेवा करने से भगवान के दिव्य संदेशों को सुनने के लिए आसक्ति उत्पन्न होती है। इस प्रकार से वासुदेव कथा का श्रवण करने से क्या होता है, भौतिक आनंद का जो प्रवृत्ति है, भौतिक आनंद को प्राप्त करने की, भौतिक आनंद के पीछे भागने की जो प्रवृत्ति है वो पूर्णतः नष्ट हो जाती है। वैष्णव सेवा, वासुदेव कथा रुचि और भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की जो प्रवृत्ति है उसे निवृत्ति। और इस तरह से नित्य रूप से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से और जो स्वयं व्यक्ति भागवत है ऐसे लोगों की सेवा करने से हृदय में जितना अभद्र है, अनर्थ है, जितना भी अवांछित है, चाहिए नहीं हृदय में, ऐसे अनर्थों का प्रायः यानी कि ऑलमोस्ट नाश हो जाता है और भगवान के लिए प्रेम भक्तिपूर्ण सेवा स्थापित हो जाती है। ऐसी प्रेम भक्ति की प्रक्रिया से काम वासना, भौतिक इच्छा, भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तड़पना, ये जो रजोगुण तमोगुण के परिणाम है, ये परिणाम भी नष्ट होते हुए नजर आते हैं और सत्वगुण के हृदय में स्थित होने की वजह से व्यक्ति आनंदमय हो जाता है। इसके बाद में इस आनंद में अवस्था में जब वो भक्ति का कार्य आगे करता है तो उसे भगवान के प्रति, भगवान के विषय में, भगवान के उपलक्ष में हृदय में शुद्ध अनुभूति उत्पन्न होती है, साक्षात्कार उत्पन्न होता है, यानी कि रियलाइजेशन भगवान के प्रति, केवल पुस्तक में पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं, भगवान के प्रति अनुभूति साक्षात्कार उत्पन्न होता है। और ऐसे अवस्था में वो परम भगवान को पूर्ण जान लेता है और भौतिक संघ से पूर्णता मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इस तरह से जब वो इस स्थिति में पहुंचता है तो उसके हृदय में जो भौतिक दुनिया के प्रति गांठ बनी हुई है वो टूट जाती है, कट जाती है और सारे अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। और कर्म फलों की जो श्रृंखला है, कर्म करना उसका फल, नया कर्म उसका फल, ये जो लंबी श्रृंखला है जो हमको जन्म जन्मांतर तक बांध के रखती है, वो श्रृंखला भी नष्ट हो जाती है। और इसके आगे बहुत सारा वर्णन दिया है। यहां तक हम समझ सकते हैं कि ये सब शुरू होता है महत सेवया, यानी महात्माओं की सेवा करने से। इसलिए महात्माओं की सेवा हमने अभी इस नाटिका में भी देखा कि जो भगवान के साथ प्रत्यक्ष बात कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं, संभाषण कर सकते हैं, प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, हम सोचेंगे इससे महान जीव क्या हो सकता है। ऐसे ही व्यक्ति को भगवान सर्वोच्च प्राप्ति देंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि आप मुझसे बात कर रहे हो, बात सही है, लेकिन मेरे धाम की प्राप्ति नहीं कर सकते आप। जब तक मेरे भक्तों की सेवा आप नहीं करते हैं तब मेरे धाम की, तब तक आप मेरे धाम की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए कांचीपूर्ण ने वरदराज की सेवा को छोड़ दिया और वो भक्त के घर में आकर उन्होंने ऐसी सेवा की जो एकदम तुच्छ सेवा होगी, मिनियल सर्विस। अपने उच्च पद को छोड़कर निम्न और नम्र स्थान स्वीकार करते हुए, अपने परिचय को छोड़ देते हुए उन्होंने महापुरुष के घर में सेवा की, तब जाकर वो वैकुंठ धाम प्रवेश करने के योग्य हो गए। हमें समझना जरूरी है कि भगवान की सेवा से भी उचित सेवा भक्तों की सेवा है। और श्रीमद् भागवत में भगवान उद्धव से कहते हैं मद भक्ता पूजा वेदिका, तो कहते हैं कि अगर आप मेरे भक्त बनना चाहते हो तो पहले मेरे भक्तों के भक्त बनो और जो भगवान के विग्रह हैं उनसे अधिक पूजनीय वो होते हैं जो उन विग्रहों के भक्त होते हैं। इसलिए विग्रहों से अधिक उन विग्रहों के भक्तों की सेवा करना अधिक आवश्यक है, स्वयं भगवान बोल रहे हैं। और वो कहते हैं कि अगर आप किसी को प्रेम करना चाहते हैं तो उन वस्तुओं से और उन व्यक्तियों की सेवा कीजिए जो भक्तों को प्रिय है। जैसे कि आदित्य में कहते हैं पश्चिम जगत में फिलो बी लव एट ऑल, अगर आप किसी को सच्ची भावना से प्रेम व्यक्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले कुत्ते को प्रेम करते हैं, उससे हम व्यक्त करते हैं कि हम आपसे ही प्रेम करते हैं। जब कुत्ते से प्रेम होता है तो मालिक को ये भी भावना होती है कि उनसे प्रेम करता है। उसी तरह से अगर हम किसी घर में जाएंगे और किसी व्यक्ति को बहुत तुलना बहुत स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, भेंट देंगे, सराहना करेंगे और जाते जाते उस बच्चे उसके बालक का अपराध करके चले जाएंगे, जो किसी को तमाचा मारेंगे या कान को चुट्टा निकाल के जाएंगे, तो आपने दिए हुए सारी भेंट वस्तुओं को खिड़की से बाहर निकलेगा और आपके पीछे वाहन का डंडा लेगा। उससे उल्टा अगर आप उसके घर में जाओगे उसको ज्यादा ध्यान नहीं दोगे, उसके बच्चे को बहुत प्यार करोगे, उसको चॉकलेट दोगे, तो बहुत उदारोगे, उसके साथ बातें करोगे, उसको बहुत रिझाओगे, प्रसन्न करोगे, तो उसकी सराहना न करते हुए भी वो व्यक्ति आपसे वो प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि उसका जो प्रिय बालक है उसको आपने प्रसन्न किया। तो ये तत्व है। इसलिए आगे कहते हैं कि जो भी हम भगवान के विग्रहों को अर्पण करते हैं वो तब तक भगवान के लिए स्वीकारार्थ है, तब तक भगवान उसको स्वीकार करने के भाव में रहते हैं जब तक हम उनके भक्तों को अपनी सेवा से प्रसन्न करते हैं, उस हद तक हमारी सेवाएं और हमारा ऑफरिंग जो है वो भगवान स्वीकार करते रहते हैं। इसलिए डीटी वर्शिप जब करते हैं मंदिर में तो डीटी वर्शिप भगवान तब तक स्वीकार करते हैं जब तक हमारे संपर्क में जो भक्त आते हैं उनको प्रसन्न करते हैं अपनी सेवा के माध्यम से। और जितनी भक्तों की सेवा होती है उतने भगवान का विग्रह जो है वो हमारे द्वारा किए गए जो ऑफरिंग्स है उसको स्वीकार करते रहते हैं। वैसे देखा जाए तो भगवान को हमारे ऑफरिंग्स की और नैवेद्य की कोई जरूरत नहीं, कोई भी जरूरत नहीं। जिनको अनंत गुण लक्ष्मियां वैकुंठ धाम में प्रेम से ऐश्वर्य के साथ सुंदर सुंदर दिव्य व्यंजन अर्पण करते हैं, उनको कलयुग के और पतित ऐसे अवस्था में दुनिया में जीते हुए यहाँ के जो केमिकल्स से भरे हुए और जो स्वादहीन है, इसमें कोई मिठास नहीं है, इसमें कोई स्वाद नहीं है, इसमें कोई दर्शन भी अच्छा नहीं है उसका, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। ऐसे सब व्यंजनों से ऑफरिंग करने से भगवान क्या उसमें रुचि होगी? जो ताजमहल होटल में हमेशा खाना खाता है वो ईरानी होटल में खाना खाने क्यों जाएगा? उसी तरह से भगवान को वैकुंठ का चप्पन भोग खाने की आदत है तो बंबई के कलयुग के समय का भोग खाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी वो स्वीकार करते हैं तब तक, उस हद तक जिस हद तक भक्त लोग उनके भक्तों की संतुष्टि को ध्यान रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, प्रसन्न करते हैं, तो वो हमारी सारी सेवाएं सारे ऑफरिंग्स को स्वीकार करते हैं। भक्ति सदा सरस्वती महाराज हमेशा कहते थे कि अगर आप अपने आप को भगवान के भक्त समझते हो तो मैं बहुत बिजी हूं और कभी और मिलूंगा आपको, और अगर कोई व्यक्ति परिचय देता है कि मैं भगवान के भक्तों का दास हूं, तुरंत अपना सारा समय कमा काम छोड़कर पूरा समय उसको दे देते। और वही ठाकुर भक्ति सिद्धांत जी कहते थे कि अगर आपको भगवान का दर्शन करने की इच्छा है तो उससे अच्छा यह है कि ऐसा कार्य करो जिससे भगवान आपका दर्शन करने में व्याकुल हो जाए। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान का दर्शन करने के अगले चरण में कोई लाभ नहीं है। अगर हम भक्तों की सेवा करेंगे और भक्त प्रसन्न हो जाएंगे तो ऐसे भक्तों का दर्शन करने के लिए भगवान स्वयं आ जाएंगे, मतलब अनायास से दर्शन मिल जाएगा। इसका उदाहरण बहुत साल पहले महाराज जी ने एक लक्षण दिया था, 20 साल पहले, उसमें वो देते हैं कि पंडरपुर में जो कुंडलिक है, पहले बहुत पापी था, ब्राह्मण होने में बहुत पाप करता था, फिर बाद में उसको एक जगह पर एक महाराज ने बहुत अच्छा बोध दिया अच्छे समय पर, तो वो वापस आया घर पे। उसके माता पिता बहुत अच्छे भक्त थे, श्रेष्ठ वैष्णव थे, और वो ऐसे ही छोड़कर उनको चला गया था, उसको ढूंढ के निकाल रहा है और घर पे लेके आता है, और उन द्वारकारी माता पिताओं की ऐसी सेवा करता है कि स्वयं भगवान विष्णु नारायण जी उनके घर पे आते हैं। तब भगवान को पुंडरीक जी कहते हैं कि मैं मेरे माता पिताओं के सेवा में व्यस्त हूं, इसलिए अभी आपकी सेवा नहीं कर सकता हूं, अगर आपकी इच्छा है तो आप इंतजार कीजिए, और ईंट फेंक देते हैं और उसमें खड़े होकर वो विनती करते हैं। और पांडुरंग जी महाराज श्री विष्णु नारायण जी ऐसे कहते हैं कि वो पुंडरीक को अपने माता पिता की, वैष्णव माता पिता की सेवा करने को देखते हुए उनको आनंद आता, इसलिए उनको इंतजार करने में कोई कष्ट नहीं हुआ। लॉर्ड विट्ठल इज एंजॉइंग विटनेसिंग द सर्विस ऑफ पुंडरीक टू हिज वैष्णव मदर एंड फादर। इसलिए 28 युग तक विष्णु भगवान वहां पर खड़े रहे, इतने उनका अपने भक्त की से वैष्णव माता पिताओं की सेवा करने का, दर्शन करने का इतना आनंद हुआ। उनका नाम भी पड़ा विठोबा, यानी कि जो मिट पर खड़े हैं, ईट पर खड़े हैं, उनका नाम पड़ा विठोबा। तो ये भक्ति सिद्धांत जी महाराज ने दिया हुआ जो वचन है उसका प्रमाण है। और पंडरपुर में आज भी पंडरपुर ये धाम क्यों बन गया, आज वैकुंठ क्यों प्रकट हो गया वहां पर, क्योंकि साक्षात विष्णु वहां पर तो आए हैं, लेकिन किसके लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि पुंडरीक ने विट्ठल देव को विनती की कि कैसे भक्त के दर्शन के लिए आप व्याकुल होकर यहां पर आए, ये आपका जो महत्व है, आपका जो महात्म्य है, आपका जो दिव्य गुण है कि भक्तों को प्रसन्न करने के लिए आप अपना वैकुंठ छोड़कर भी आ जाते हो कलयुग में, भौतिक जगत में, इसलिए आप इसी रूप में लोगों को दर्शन दीजिए। तो ये नहीं कि भक्तों की माता पिता की सेवा करने के बाद में जब वो फ्री हो गए तब उनका वार्तालाप हुआ तब भगवान चले गए, ऐसे भी नहीं, भगवान उसके आगे भी उसी अवस्था में खड़े हैं। ये जानने के लिए कि जो मेरे भक्तों की सेवा करता है उसकी इच्छा पूर्ण करने के लिए भी मैं आता रहता हूं, उनकी इच्छा क्या है कि सारे अनंत जो बद्ध जीव है उनके लिए दर्शन देने के लिए उस रूप में जो भक्तों की सेवा से प्रसन्न होकर भगवान दे रहे हैं उस रूप में दर्शन के लिए आप खड़े हो जाओ और उसको बस पूर्ण करने के लिए भगवान मांग रहे हैं। अलग अलग प्रकार के भक्त होते हैं, तो उसके पहले हम जानते हैं कि भक्तिविदान हॉस्पिटल की ओर से उसको जरा बिना बच्चों को बीच बीच में भाग रहे थे, बैठ जाओ आराम से एक जगह बैठ जाओ सब लोग, तो बरसाना क्या करते हैं हम लोग, पंडरपुर में क्या करते हैं, क्यों करते हैं, इसके पीछे भी यही रहस्य है। क्योंकि बरसाना में और पंडरपुर में जो निवासी रहते हैं और जो आते हैं वहां पर वो धामवासी हैं, और धामवासी भगवान को बड़े प्रिय होते हैं, उनको भगवान अपने धाम में आने को देते हैं बाहर से, और कुछ लोगों को वहां जन्म भी देते हैं, और वहां पर अपने ही आश्रय में अपने ही चरणों में अपने ही बोध में रहते हैं। तो वो भक्त जो भगवान को अति प्रिय है, उन भक्तों की सेवा करने का हम प्रयास करते हैं। बाहरी रूप से समाज सेवा है, बाहरी रूप से वो मूर्तियां का ऑपरेशन है, लोगों को दृष्टिहीन लोगों को दृष्टि देने का प्रयोजन है, गरीब लोग हैं उनके पैसे नहीं है इसलिए उनको फ्री में सेवा करते हैं, ये सब बाहरी हिस्से हैं। लेकिन उसके अंदर का हिस्सा ये है कि हम श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहते हैं। जब श्रीमती राधा रानी और पंडरपुर के श्री विट्ठल भगवान के भक्तों की उनकी जरूरत के समय पर सेवा की जाती है, और जब वो प्रसन्न हो जाते हैं उनकी प्रसन्नता की वजह से श्री राधा कृष्ण और श्री विट्ठल भी प्रसन्न हो जाते हैं, और जब वो प्रसन्न हो जाते हैं तो हमें उनकी कृपा मिलने की अभिलाषा होती है। इसलिए सालों साल हम लोग पंडरपुर और वर्धा में ध्यान लगाते हैं, और जितने हो सके अधिक अधिक लोगों को उसमें लगाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कोई जाने या ना जाने जब वो कोई धाम वासियों की सेवा करता है तो भगवान को प्रिय है, तो अनायास ही भगवान का दर्शन ना करते हुए भी भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। अगर श्री जी के मंगल आरती में लोग पहुंच भी नहीं पाएंगे सेवा की वजह से, फिर भी श्री जी महारानी उनका दर्शन करने के लिए वहां पर आ जाएगी। जब वो प्रसन्न होकर ब्रजवासी नेत्र दृष्टि प्राप्त करके जब प्रसन्नता से स्मित हास्य करेंगे जो सेवा करते हैं उनकी ओर, तो राधा महाराज बताते हैं, रमेश बाबा जी महाराज बताते हैं कि जब वो ब्रजवासी प्रसन्न होकर आपकी ओर मुस्काते हैं तो ये समझ लेना कि राधा और कृष्ण आपकी ओर स्मित हास्य कर रहे हैं। तो यही वैष्णव सेवा का रहस्य है। तो अलग अलग प्रकार के वैष्णव होते हैं, एक गुरु महाराज होते हैं, सन्यासी होते हैं, कुछ वरिष्ठ वैष्णव होते हैं, कुछ हमारे जैसे हमारे स्तर के हमारे मित्रता के स्तर पर वैष्णव होते हैं, कुछ वैष्णव कनिष्ठ होते हैं, जूनियर होते हैं, नए होते हैं, नए मस्त होते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के वैष्णवों की अच्छी भावना से हमको सेवा करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब वैष्णव सेवा हम करते हैं तो वैष्णव सेवा का जो उद्देश्य है वो सेवा की महानता नहीं है कि हम बड़ी सेवा कर रहे हैं, छोटी सेवा कर रहे हैं, बड़ी वॉल्यूम में सेवा कर रहे हैं, बड़े दिनों की सेवा कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन उसको जो भाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान भावग्राही जता कर रहे हैं। हम कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं उसको पसंद नहीं होते, किस भाव से सेवा कर रहे हैं उससे पसंद होते। और ये भाव क्या हो रहा है कि हम जो भी सेवा करें उससे वैष्णव जिनकी हम सेवा कर रहे हैं वो प्रसन्न हो जाए, संतुष्ट हो जाए, समाधान को प्राप्त करे, ये हमारा सबसे श्रेष्ठ उद्देश्य है। चाहे वो सेवा छोटी सी हो या बड़ी हो या कई दिनों की हो या बहुत तीव्र हो, कैसे भी हो, उस सेवा के माध्यम से उस वैष्णव को संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए। जैसे रतुनदास अभी गुरु का मैंने वर्णन किया कि गुरु एक वैष्णव है जिनकी सेवा हम करनी चाहिए। उदाहरण क्या है, नरोत्तम दास ठाकुर जी ने जो राजा थे, राजपुत्र थे, राजा होने के योग्य थे, खेतुरी ग्राम से आए थे, लेकिन क्या कर रहे थे, लोकनाथ जी महाराज का जहां पर विष्ठा विसर्जन करते थे उस जगह को वो साफ करते थे मली सुबह ले जाकर। तो एक दिन उनको लोकनाथ जी महाराज पकड़ते कि क्यों ऐसा कर रहे हैं आप, राजपुत्र होते हैं, राजपुत्र हैं, राजा होने के योग्य हैं आप, फिर भी ऐसा कनिष्ठ कर दर्जे का काम क्यों कर रहे हैं, ये तुच्छ सेवा क्यों कर रहे हैं। तो दास कहते हैं कि मेरा राजपुत्र होने क्या मतलब है, अगर मुझे गुरु की सेवा गुरु की कृपा नहीं प्राप्त हो रही है तो मेरा सारा जीवन सारा पद सारे जो स्थिति है वो सब व्यर्थ है। तब जाकर प्रसन्न होकर लोकनाथ जी महाराज ने उनको दीक्षा दी और नरोत्तमदास ठाकुर जी महाराज आगे अपना जीवन चलाते। साथ साथ ईश्वरपुरी जी चैतन्य महाप्रभु गुरु हैं, उन्होंने अपने गुरु माधवेंद्रपुरी की उनके शरीर छोड़ने के समय अंतिम समय पर बहुत उच्च सेवा की, यानी कि शरीर सेवा, मलमूत्र विसर्जन की सेवा, शरीर को स्वच्छ करने की सेवा, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करने की सेवा। और उसकी वजह से क्या हुआ, माधवेंद्र गुरु जी उनको बहुत हृदय से आशीर्वाद किया, और उसकी वजह से स्वयं परम भगवान जब अपने सबसे अनोखे दिव्य अवतार में आए चैतन्य महाप्रभु बनकर, तो उन्होंने ईश्वरपुर से दीक्षा ग्रहण की। यह है गुरु, तो इस परम वैष्णव गुरु होते उनकी सेवा का परिणाम। और भी सन्यासियों की सेवा करने का जो भाग्य है, इसके उदाहरण था नारद मुनि जी का। नाराज मुनि जी पिछले जन्म में पता नहीं उनका नाम क्या था, मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनकी माता विधवा थी, उनके पिताजी का ध्यान हो चुका था और माता शुद्राणी थी, शुद्रकुल में जन्म हुआ था उसका, उसका पुत्र था तो 5 साल का था। तो माता और पुत्र मिलकर जो भक्ति वेदांत थे, जो भगवान के बहुत जो साक्षात्कारी भक्त थे, ऋषि मुनि थे, सन्यासी थे, जंगल में उन्होंने उनकी सेवा की और रोज उनकी सेवा करके उनको संतुष्ट करने के पश्चात जो नारद मुनि पहले अवतार के 5 साल के बालक थे, उस बालक ने रोज उनका महाप्रसाद लिया, तो बड़े प्रेम से भक्ति वेदांत ने उनको दे दिया। संतुष्ट होकर उसको ग्रहण करने के पश्चात भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उनकी माता का देहांत हो गया। तो माता जी झोपड़ी में रहती थी, उस झोपड़ी को, झोपड़ी के अंदर माता को रख के उस झोपड़ी को उन्होंने अंत संस्कार के रूप में अग्नि लगा दी। तो एक घर था जिसकी आसक्ति थी और माता थी, दोनों को एक साथ उन्हें दाह संस्कार के रूप में नष्ट हो गया। और फिर बालक जो है वो चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, और अगले जन्म में वो नारद मुनि बन गए, केवल भक्ति वेदांतों की सेवा करके, उनकी कृपा प्राप्त करके, संतुष्ट करके, अगले जन्म में ऐसी अवस्था में पहुंच गए कि कभी भी जब चाहे जब वैकुंठ में प्रवेश कर सकते, भगवान से बात कर सकते, ब्रह्मा से बात करते हैं, शिव जी से बात कर सकते हैं, देवताओं से बात करते हैं, किसी भी लोक में जा सकते हैं, किसी भी राज्य में जा सकते हैं, वंदनीय पूजनीय हो गए, सब जगह पर जहां जाते थे वहां पर उनका चरण धोकर उनकी पूजा करना आरंभ हो गया और भगवान के पूर्ण साक्षात्कारी भक्त बन गए, परम वैष्णव। उसके बाद में शबरी की कथा आती, शबरी भी ऐसी थी भिल्ल जमाने की, मतलब बहुत ट्राइबल लेने की, क्या कहते हैं, नोमैडिक ट्राइब्स, घूमने वाले इतने जाति उसमें थी। उसके पिताजी मेंढी को पालन करते थे, तो एक दिन विरक्त होकर उन मेंढियों को पिताजी को मारते हुए देखकर उसको विरक्ति आ गई बहुत, और घर छोड़ के चले गई 5 साल की उम्र में, जंगल में भाग गई, बहुत करुणा आई हृदय में मेंढियों की वजह से। और विल्ल थी, उसको पेड़ में चढ़ना बहुत अच्छी तरह से आता था, तो पेड़ में जाकर बैठ गई और देखा कि बहुत सारे ऋषि मुनि वहां पर एकत्र होकर शास्त्रार्थ विचार कर रहे हैं, भगवान के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो वो सब उन्होंने सोचा कि अब मैं इनकी सेवा करूंगा, छोटी सी बालिका थी वो। तो रोज सवेरे 3 बजे 4 बजे सूरज उगने के बहुत पहले उठकर वो उस जगह को साफ करना, फूलों को इकट्ठा करना, फल को इकट्ठा करना, हर प्रकार से साधुओं के शास्त्रार्थ विचार करने के लिए जो जो अनुकूल मिलते हैं, जो यज्ञ के लिए अनुकूल वस्तुएं हैं, वो सब कुछ वो इकट्ठा करती थी और सब तैयारी करके फिर पेड़ पर चढ़ के चुप जाती थी। तो साधु लोग बड़े एक्सेप्ट होते थे, अरे कौन कर रहे हैं, इनसे पूछते थे, इनको लग रहा है कि ये कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि ये कर रहे हैं, लेकिन इनको ध्यान में आया कि इनमें से कोई भी कुछ नहीं कर रहा है, तो उनको बड़ा आश्चर्य हो गया। सबसे पूछा, कोई भी नहीं कर रहा है सेवा, लेकिन सब कुछ काम टिप टॉप रेडी हुआ करता था। एक दिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो जल्दी आ गए और झाड़ियों में छुप गए, तो उन्होंने देखा कि पेड़ से उतर कर एक छोटी सी बालिका ये सारे काम बड़े प्रेम से कर रही है और सारा काम प्रेम से अपनी जगह पर रख के करने के बाद में आराम से जाकर पेड़ में जाकर छुप रही है। तो अचानक सब लोग प्रकट हो गए और उन्होंने लड़के को पकड़ लिया, क्योंकि अभी तुमको छुपने की जरूरत नहीं, तुम्हारे साथ में झोपड़ी में आ गए। तो वो सब पुरुष साधु होने के पश्चात भी उन्होंने एक कन्या को अपने साथ में दूर थोड़े से झोपड़ी में रहने का व्यवस्था किया और फिर कई साल तक शबरी ने उन सन्यासियों की हृदय से सेवा की, हर प्रकार की सेवा की। और एक दिन अपना अनुष्ठान पूरा करके सब साधु ऋषिगण वहां से चलने लगे, तो उनमें से एक ने इसको दीक्षा ली, शिष्य करके स्वीकार किया और ये आशीर्वाद दिया कि इसी जन्म में तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। वो भाव विभोर हो गई, मुझे भगवान राम के दर्शन होंगे, भगवान राम के दर्शन होंगे, इस आनंद विभोरता में वो ये पूछना भूल गए कि कब होंगे। तब तक साधु सब चले गए थे, क्षितिज के पार हो गए थे, तो उनका दर्शन भी छाया भी दिखाई नहीं पड़ रहे थे। तो उसके पश्चात 5 साल की उम्र से 85 साल की उम्र तक रोज प्रभु रामचंद्र के स्वागत की तैयारी रोज वो करती थी बिना थकते। 5 साल की उम्र से वो फिर जवान हो गए, जवान से मध्यम आयु की हो गए, मध्यम आयु से वृद्ध आयु की हो गई, वृद्ध आयु से बड़ी अति वृद्ध आयु की हो गई, सब दांत गिर गए, आंख भी ओझल हो गई, दृष्टि भी ओझल हो गई, और उसके बाद में बड़ी कठिनाई से वो रास्ते को सजा रही थी फूलों से कि प्रभु रामचंद्र आएंगे तो दो चरणों की जोड़ी उनको दर्शन दिखाई दिया। वो झट से ऊपर भी उठ नहीं पाई, धीरे 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 ऊपर पाई दिखा तो प्रभु राम और लक्ष्मण उनके सामने खड़े थे। क्यों हुआ सब कुछ ये? क्योंकि एक समय पर उन्होंने साधुओं को सेवा करके प्रसन्न किया था कि साक्षात भगवान का दर्शन। भगवान सीता जी के बहाने ढूंढते ढूंढते शबरी के पास आ गए और ऐसी कृपा की कि उसी दिन उसी समय उसके झूठे बैल खाकर उसी समय वो भगवान के धाम अयोध्या धाम में प्रवेश कर दी गई। तो ये हुआ सन्यासी की सेवा करने का उदाहरण। तो सन्यासियों की सेवा करना ये गृहस्थों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग सभी भोगों में लिप्त रहते हैं, हमारे पास बहुत सारे साधन हैं, पैसे होते हैं, घर गृहस्थी प्रॉपर्टी होती है, अधिकार होता है, बालक होती है, पत्नी होती है। तो ऐसे अवस्था में अपने गृहस्थी के आसक्ति से मुक्त होने के लिए हमें जो विरक्त लोग हैं उनकी सेवा करना बहुत जरूरी है। उनकी सेवा करने से, उनको प्रसन्न करने से, उनकी कृपा से हम धीरे धीरे अपनी आसक्तियों से, हृदय ग्रंथि से मुक्त हो सकते हैं। इसके आगे जो है वो सीनियर वरिष्ठ भक्तों की सेवा का उदाहरण है जगदानंद पंडित। जगदानंद पंडित को चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था कि जब भी आप वृंदावन जाओगे तो अकेले मत जाना, क्योंकि वृंदावन का वातावरण बहुत बिल्डरिंग होता है, बहुत भ्रमक होता है। आप अगर अकेले जाओगे तो ब्रजवासियों के अलग अलग भाव को देखते हुए चकित हो जाओगे और अपने पाद अपने पद से भ्रष्ट हो जाओगे। तो जाओगे तो केवल सनातन गोस्वामी के संग ही रहना, उनके संग ही उनकी सेवा करते हुए ब्रज का दर्शन करने का प्रयास करें। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी की इतनी अच्छी सेवा की ब्रज में कि सनातन गोस्वामी प्रसन्न होकर पूरे ब्रज की परिक्रमा कराई, मतलब भगवान का जो घर है, लीला स्थली है, सब लीला उनके साथ में साक्षात्कार करवाया जगदानंद पंडित को। फिर नरोत्तम दास सामानंद गोस्वामी श्रीनिवास जी इन्होंने अपने अपने गुरुओं से दीक्षा लेने के पश्चात शिक्षा गुरु के रूप में जीव गोस्वामी को स्वीकार किया और तीनों महान आचार्यों ने अपने संप्रदाय के बड़े महान आचार्य हैं, इन्होंने महान आचार्यों ने जीव गोस्वामी की सेवा की और जीव गोस्वामी की शरणागति में सेवा में उन्होंने जो भगवान के प्रेम भक्ति के जो रहस्य है वो सब जान लिए। जब हम सेवा करते हैं वरिष्ठ वैष्णव की साक्षात्कारी भक्तों की तो उनकी कृपा से हमारे हृदय में जो भगवान की भक्ति के सार हैं, भगवान की भक्ति के रहस्यमय सार है वो सब प्रकट हो जाते हैं। किताब से श्लोक पढ़कर याद करके नहीं, हृदय में अनुभूति के रूप में वो प्रकट हो जाते हैं। ये वरिष्ठ भक्तों की सेवा का रहस्य है। और मित्रता के रूप में जो हमारे साथ वाले भक्त होते हैं, जो हमारे साथ भक्त बने होते हैं, जो हमारे साथ रहे होते हैं, साथ सेवा की होती है, उनकी सेवा कैसे की जाती है? गुह्यम आख्याति पुच्छति, जो हमारे हृदय में बात है वो हम उनसे कर सकते हैं, जो उनके हृदय में बात है वो हमसे कर सकते हैं। गुह्यम यानी कि अकेले में एकांत में अपने हृदय की जो अंदर की बात है उसको प्रकट करना ये उनकी सेवा है। उनके हृदय के अंदर की बात सुनना, श्रवण करना, क्या कहते हैं उसको, एम्पति से यानी कि भाव से, ये उनकी सेवा है। और वैसा करने से चाहे वो हमारा मित्र हो लेकिन ऐसे प्रकार के आदान प्रदान से प्रेम का रहस्य प्रकट हो जाता है और एक दूसरे के प्रति गहरा प्रेम होने की वजह से भगवान के प्रेम की अनुभूति भी होने लगती है। और उसके बाद आते हैं कनिष्ठ यानी कि जो नए नए भक्त आए हुए हैं, जो भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, उन लोगों को प्रभुपाद जी के प्रवचन में मैंने सुना कि उन लोगों का सेवा करना मतलब उनको युक्तिपूर्वक भगवान की सेवा में लगाना, ये हमारे उनकी तरफ सेवा है। उनको भगवान के प्रति बोध देना, भगवान के विषय में, भगवान के नाम के विषय में, भगवान के देश के विषय में उनको बोध देना और उनको उनके प्रवृत्ति के अनुसार भगवान की सेवा में लगाना और भगवान की सेवा की रुचि देना, ये उनके प्रति हमारी सेवा है। इसमें कोई बड़प्पन की भावना नहीं कि हम सीनियर है और जूनियर है। प्रेम मैत्री कृपा, गोस्वामी जी बताते हैं उपदेशानुग में कि सीनियर भक्तों के प्रति हमारी सेवा प्रेमपूर्ण और आदरपूर्ण होनी चाहिए और जो हमारे संग वाले भक्त हैं उनकी तरफ हमारी सेवा जो मैत्रीपूर्ण होनी चाहिए, हृदय की भावना की आदान प्रदान, और जो हमारे पादवी बने हुए कनिष्ठ भक्त हैं उनके प्रति कृपा के रूप में हमारी सेवा होनी चाहिए। ऐसा समझ के नहीं कि हम कृपा करने योग्य हैं, हम कृपा के देने के लिए योग्य हो गए, ऐसा नहीं है। लेकिन ये नेचुरल भाव है, जो कनिष्ठ भक्त होते हैं उनको भगवान की सेवा में लगाना उनकी सेवा होती है। और एक प्रकार की सेवा होती है जो दूसरों को भगवान का मित्र मानना और अपने आप को भगवान का सेवक मानना और सब लोगों को भगवान का मित्र मानना, खास करके जो भक्त हैं भगवान के, चाहे वो जूनियर हो, सीनियर हो, इक्वल हो, कुछ भी हो, वो सब भगवान की सेवा करने वाले, इसलिए वो भगवान के मित्र हैं। ऐसा एक श्रेष्ठ उदाहरण अनोखा सफर इस ग्रंथ में प्रधानमंत्री जी महाराज बताते हैं, वो है घनश्याम दास बाबा। घनश्याम बाबा जब ब्रह्मचारी प्रधानमंत्री महाराज जी को मिलते थे, कहते थे कि आप गोपीचंद अग्रवाल के मित्र हो, आपका आनंद लेना आपका कर्तव्य है, आपका स्वभाव आनंद लेने का है, आपका ये अधिकार है, मैं गोपीचंद अग्रवाल का सेवक हूं, इसलिए ये रोटी, ये पानी, ये जो भी है वो सब आपका है, आप लीजिए, ये कंबल खंड में ये भी आपका है, इसको आपको लेना चाहिए, मेरा तो काम आपकी सेवा करना है, आप गोपीचंद अग्रवाल के मित्र हो, इसलिए गोपीचंद अग्रवाल की तरफ से सारे भोग आपके लिए होने चाहिए। नो नीड ऐसे बोलते थे, जल लाने के लिए बोलते नहीं, आपको कष्ट नहीं करना चाहिए, कष्ट मुझे करना चाहिए, आपको कल आनंद देना चाहिए, इसलिए अपने हिस्से की रोटी, अपने हिस्से का जल, अपने हिस्से का जो भी था वो सब राधानाथ जी महाराज को देते थे। रात ठंड से कांपते थे, बहुत बहस करते थे, फिर वो जो कंबल है वो महाराज जी को देते थे, और कुछ देर बाद में महाराज जी उठते थे और कंबल उसके शरीर पर डालते थे क्योंकि वो कांपते हुए नजर आते थे, और कुछ देर बाद में कांपते हुए अवस्था से थोड़ी गर्मी की अवस्था में गर्मी का अनुभव करने के बाद फिर जग जाते थे और कहते मेरे शरीर पे कंबल कैसे आ गया, ये आपके लिए होना चाहिए, फिर वो उनको देते थे। इस तरह से कई बार आदान प्रदान होकर पूरी रात बीतती थी, इतना सेवा भाव था। हमारे हॉस्पिटल में भी हमने ये तत्व का अमल करना की कोशिश कर रहे हैं। क्या है ये इसका अमल करने की कोशिश, ये है कि जो भी इस हॉस्पिटल में मरीज आते हैं वो सब प्रभुपाद जी के द्वारा भेजे गए उनके मित्र हैं, उनके स्नेही हैं, परिचित हैं, और हम सब उनके सेवक हैं प्रभुपाद जी के, और प्रभुपाद जी के निर्देश से उनके परिचित, उनके मित्र, उनके स्नेही जब यहां पर आते हैं मरीज बनकर, तो उनकी सेवा करना हमारा फर्ज है, हम सेवाएं हैं और मरीज सब प्रभुपाद जी के मित्र हैं। ये भाव जो हमने कोशिश कर रहे हैं, ये घनश्याम बाबा के जीवन के उदाहरण से प्रेरणा लिया है, अभी तक इसकी परिपूर्णता में नहीं पहुंचे, लेकिन कोशिश ये है कि हम हर मरीज को देखें इस तरह से कि ये प्रभुपाद जी के मित्र हैं और हम प्रभुपाद जी के सेवक हैं, इसलिए प्रभुपाद जी के मित्रों की जो मरीज है उनकी सेवा करना उस भाव से हमारा कर्तव्य है। उसके बाद में राजा प्रताप रुद्र का उदाहरण है। प्रताप रुद्र महाराज जी को भगवान चैतन्य महाप्रभु को मिलने की बहुत इच्छा थी, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनको धुतकार दिया कि नहीं मिलना है, हम सन्यासी हैं और राजा को कैसे मिल सकते हैं, राजा तो ऐश्वर्य संपन्न होता है, उस पर भोग की वस्तु होती है, हम नहीं मिल सकते। तब जाकर प्रताप रुद्र को अन्य वरिष्ठ वैष्णव ने आदेश उपदेश दिया, सलाह दी कि आप सब जो भक्त हैं चैतन्य महाप्रभु उन सबकी सेवा कर, जितने बंगाली भक्त आए थे जगन्नाथपुरी में उन सब भक्तों के लिए प्रताप रुद्र महाराज ने रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, हर प्रकार की सुविधा, हर प्रकार का आनंद का इंतजाम किया, और ये सुनकर चैतन्य महाप्रभु बड़े खुश हो गए। इस आरोप भट्टाचार्य ने उनको हर बार भक्तों की सेवा करने का आदेश देते रहे, और तब जाकर अंत में इन भक्तों को प्रसन्न करके, क्योंकि बंगाली वैष्णव सब प्रसन्न हो गए थे, इनकी इतनी सुंदर व्यवस्था रहने खाने की और हर प्रकार की व्यवस्था इतनी सुंदर थी, सब बंगाली वैष्णव प्रसन्न हो गए, और उसके फल स्वरूप इनकार करने पर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने आखिर में निज सेवा भी दी उनको, उनके चरणों की सेवा दी जगन्नाथ वल्लभ मैदान के अंदर परिचय के अंदर, और फिर उनको ऐसा सेवा दिया कि भगवान के दशम स्कंद का, भागवत के दशम स्कंद का गीत गाकर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को रिझाया, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको गले लगाया। यानी कि जो व्यक्ति स्वयं महाप्रभु चैतन्य उनको मिलने से इनकार कर रहे थे, उन्होंने परम कृपा प्रताप पुत्र के ऊपर बरसाया। फिर रथ यात्रा के अंदर उनके नेत्रों से, महाप्रभु के नेत्रों से पिचकारी की तरह आंसू बह रहे थे, उड़ रहे थे, वो सब प्रताप पुत्र के शरीर पर गिरे। उससे अति आनंद का अनुभव उनको हुआ और केवल 3 व्यक्तियों को दर्शन हुआ, उसमें से एक व्यक्ति थे प्रताप रुद्र। उनको ये पता चल रहा था कि 7 केंद्र मंडली के अंदर 7 रूप में चैतन्य महाप्रभु विराजमान है, एक साथ में 7 केंद्र मंडली में 7 रूप धारण करके नृत्य कर रहे हैं। ये 3 व्यक्तियों से एक व्यक्ति थे प्रताप रुद्र, जिनको ये दिखाई पड़ रहा था, बाकी सबको लग रहा था कि हमारे ही रूप में नाच कर रहे। तो ऐसी कृपा जो है वो राजा प्रताप रुद्र को तब प्राप्त हुई जब उन्होंने सारे चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों का, भक्तों का हृदय से सेवा की। और एक सेवा ऐसी होती है कि हम श्रेष्ठ होने पर भी किसी हमसे कनिष्ठ भक्तों की सेवा करना है। इसका उदाहरण हनुमान जी है। हनुमान जी का दास्य भाव इतना गहरा और इतना डीप है कि इतने श्रेष्ठ उनका भी वर्णन करने को समय नहीं है उनकी महानता का, लेकिन स्वयं एक महान भक्त होने पर भी उन्होंने उनसे कम दर्जे के भक्त थे सुग्रीव जी, उनके तो यही साधक सेवा किए, क्योंकि उनको आदेश प्राप्त हुआ था, उन्होंने सोचा नहीं कि हमारा जूनियर है, बड़ी नम्रता से, बड़े हृदय से और सन्मन लगा के उन्होंने उनकी सेवा की। आगे जाकर एक युग बीतने के बाद में जब द्वापर का समय आया, और ये तो त्रेता युग के थे, तो निश्चित रूप से वो द्वापर के सभी लोगों से श्रेष्ठ थे, तो फिर भी अर्जुन के रथ पर वो केवल ध्वज के रूप में बैठकर उन्होंने सेवा की। जो अकेले सारे कुरु आर्मी को, पूरी कुरु सेना को मार सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे, वो रावण को मारने के लिए भी समर्थ थे, लेकिन महाभारत के युद्ध में तो उनके लिए कुछ भी कष्ट नहीं था। फिर भी जब उनको आदेश दिया गया कि आपको केवल अर्जुन के रथ पर ध्वजा पर बैठकर केवल गर्जना करना है, जब वो भी कहा जाए तब, हर समय नहीं, भी उन्होंने बड़े तन्मयता से वो सिखा दिया। सोचा नहीं कि ये तो अर्जुन है, तो हमसे जूनियर डिवोटी है, इसको सिखाना चाहिए कैसे मारना है, चाहे तो उसके रथ में बैठकर सभी शत्रुओं को मार सकता हूं, ऐसा नहीं। सेवा जो होती है वो सेवा होती है, उसमें कोई कनिष्ठता और श्रेष्ठता और वरिष्ठता नहीं होती है, सेवा होती है तो उसको हृदय से करना चाहिए। इसका हनुमान जी एक श्रेष्ठ, अति श्रेष्ठ उदाहरण है। अभी कई प्रकार की सेवा होती है, तो मैं अभी ये जो सेवा भाव वैष्णव लोगों का है, ये वैष्णव लोगों को प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी कृपा उनको मिल जाती है, भक्ति के अभ्यास से हृदय में प्रकट हो जाते हैं। तो रामानुजाचार्य ने अपने भक्तों के बाद एक अमीर भक्त के घर में भेजा, जो अमीर भक्त उनका शिष्य था उनके घर में भेजा, उनको कहा कि उनको बताओ हम रात को उनके घर में रहने के लिए आ रहे हैं। भक्त जाते हैं, उनको बोलते हैं कि आज रामानुजाचार्य गुरु महाराज आपके घर पे आ रहे हैं, तो तुरंत वो भक्त जो है वो तैयारी में लग गया, एकदम बिजी हो गया। भक्तों के लौट क्या है, रामानुजाचार्य ने पूछा कि क्या हुआ, उन्होंने क्या जवाब दिया, वो इतने प्रसन्न हो गए कि तुरंत ही उसी क्षण लग गए अपनी आपकी तैयारी में, आपके आने की तैयारी में, बोले आपसे कैसे व्यवहार किया उन्होंने, हमको तो उन्होंने कुछ बात ही नहीं किया, उसके बाद इतने व्यस्त हो गए, इतने आनंदी हो गए कि वो क्या गए, हम तो निकल गया है, तो फिर अभी तो मेरे दूसरे भक्त के घर में जाना, बहुत गरीब था बेचारा, कोई धन नहीं था, झोपड़ी थी उसके पास, जब उसको आगे बोलना भी कि मैं उनके घर पर रात को रहने को आ रहा, तो जैसे ही उन्होंने कहा उस गरीब भक्त के घर में जाकर कि मैं आपके घर में रहने को आ रहा हूं, तुरंत उन्होंने कहा कि आप बैठिए, आप विराज जी, आप गुरु महाराज के शिष्य हैं, कितने अच्छे खबर लेकर आए हैं, आप बैठिए, उनको प्रसाद दिया, उनके चरणों चरण धोए, उनके प्रसाद खिलाया, उनको सत्कार किया, उनको फूल माला पहनाई, उनके बेटे वचन बोले उनके साथ में, उनसे प्रसन्न कर दिया। जब वो जाने का समय आया, तभी अभी आप अभी मैं आपसे अभी समय से गुरु महाराज की आने की तैयारी करना चाह रहा हूं, तो भक्तों ने कहा कि ऐसे ऐसे व्यवहार किया, तो रामानुजाचार्य ने कहा कि हम इस गरीब भक्त के रहने घर में रहने को जाएंगे, और गए वो रात भर वहां के सब सेवा का आनंद लिया, और रात भर वो अमीर भक्त जो है धनिया व्यक्ति था वो इंतजार कर रहा कि महाप्रभु, रामानुजाचार्य ने आपको बताया था कि आने वाले, आए नहीं वो, उनको अंग्रेज खबर मिली क्योंकि सब शहर में खबर फैल गई थी कि रामानुजाचार्य ने रात इस भक्त के घर में गुजारी, उस भक्त के घर में धनी भक्त आया, महाराज जी आप हमारे घर पे नहीं आए, जो मेरी सेवा करने में इतना व्यस्त है, जो मेरे भक्तों को और सेवकों को भूल जाता है, उसके घर में मैंने आना चाहता, साबित कर दिया जब हम मालिक की सेवा करना चाहते हैं तो मालिक को जो सेवक है उनकी भी सेवा बड़े प्रेम से करनी चाहिए, क्योंकि मालिक के सेवक मालिक को बड़े प्रिय होते हैं। जब उनको प्रसन्न करते हैं तो मालिक अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। अभी समय समाप्त होने जा रहा है, कुछ समय में आपको बताना चाहते हैं कि हम लोगों को वैष्णव की सेवा कैसे करनी चाहिए हमारे जीवन में, प्रैक्टिकल सर्व में, कलयुग में, आज के समय में 2012 साल में कैसे करनी चाहिए। हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हम उन भक्तों की सेवा करेंगे जो जिनका हमारा संबंध अच्छा है, जिनका हमारा रिश्ता अच्छा नहीं उनकी सेवा नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग ये सोचकर करना चाहिए सेवा कि भक्त हमारे से अच्छे व्यवहार में होंगे, अच्छे संबंध में होंगे, या नहीं भी होंगे, या दूर संबंधी होंगे, या पास संबंधी होंगे, हर प्रकार के भक्तों की सेवा बड़े प्रेम से करनी चाहिए। हम सोचते हैं कि इन भक्तों ने हमारा दिल दुखाया है, इनकी हम सेवा नहीं करेंगे, इन्होंने हमारा कभी अपमान किया है, कभी कभी हमको इंसल्ट किया है, हमारे लिए अप्रिय काम किया है। सेवा का भाव इतना गहरा होना चाहिए कि जिन्होंने हमारा भी अप्रिय किया है उनका भी सेवा करने का हमको प्रयास करना चाहिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव की व्याख्या की है, चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया वैष्णव कौन है, उन्होंने कहा जो भी भगवान के नाम का जप करता है वो वैष्णव है। ये पहली बार उन्होंने बताया, यानी कि वो कल आया है या परसों आया है, हम लोग 25 साल पहले आए हैं, फिर भी जो भगवान के नाम का उच्चारण करता है वो वैष्णव है और वो भगवान को प्रिय है। ये मत समझना कि हम लोग जितने अधिक सीनियर है उतने भगवान को अधिक प्रिय है, और जितने कम साल आपके हैं उतने हम कम प्रिय है। तो भगवान के भक्त भगवान को हमेशा प्रिय होते हैं, और वो कितने ज्यादा और कम प्रिय होते हैं वो केवल वही जानते हैं, हम लोग उसका जजमेंट नहीं कर सकते। अगले साल इंद्र बाबू पूछा गया कि वैष्णव कौन है, तो उन्होंने क्या कहा कि जो दूसरों को नाम देते हैं, स्वयं नाम देते हैं दूसरों को भी देते हैं वो वैष्णव है, यानी कि जो प्रचारक है तो भगवान के नाम के प्रचार में अपने जीवन को दे चुके हैं, वो भगवान को बड़े प्रिय होते हैं और वो वैष्णव है। और अगले साल जब उनका समय आया तब उन्होंने कहा कि जो वैष्णव, प्लीज सिट डाउन प्लीज, जो भक्त जो है उनका केवल दर्शन मात्र करने से भगवान का नाम लेने की प्रेरणा होती है, स्फूर्ति होती है, वो वैष्णव। तो एक और स्तर बताया, लेकिन सत्य है कि ये सब तीनों वैष्णव है। इसलिए जिन्होंने हमको दिल दुखाया है, जिन्होंने हमारा प्रेम किया है, जो हमारे अच्छे रिश्ते में है, इसका भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं। जब सेवा करने का मौका मिलता है सब भक्तों की, हमारे मन के अनुसार कोई भी भेदभाव न करते हुए हमको सेवा करना चाहिए। उससे आगे सेवा करते समय अपना पद क्या है और हम कौन से पोजिशन में है, ये हम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। जैसे हमारे गिरिराज प्रभु है, हमारे गिरिराज प्रभु हमारे हॉस्पिटल के चीफ ऑर्थोपेडिक सर्जन है, लेकिन बड़ी 5 घंटे की सर्जरी करने के पहले हाथ में फुला हुआ मुलगा लेकर वो सन्यासी के लिए भागते रहे, वे वार्ड के एरिया में, ऑपरेशन थिएटर के एरिया में। सन्यासी लोग पूछते थे क्या डॉक्टर क्या कर क्या रहा है, गरम गरम किया हुआ मुलगा जो है वो भाग के जाके डॉक्टर सन्यासी को खिला, ये नहीं सोच रहे कि मैं कौन हूं हॉस्पिटल में चीफ ऑर्थोपेडिक सर्जन। एक अच्छा उदाहरण है कि वैष्णवों की सेवा करने का मौका आता है तो सारा कुछ भूलकर हमको समर्पित होकर उनकी सेवा करनी चाहिए। प्रताप रुद्र का भी उदाहरण, राजा होते हुए उन्होंने झाड़ू लगाया भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और एक सेवा का स्थिति ऐसी होती है कि हमारे लिए बहुत डिफिकल्टी होती है, कुछ कठिनाई, हम बीमार हो जाते हैं, संकट आ जाते हैं, हमारे पास धन नहीं होता है, कोई साधन नहीं होते, कोई रिसोर्स नहीं होता है, फिर भी भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए। जो भी हमारे पास है, जो भी हमारे पास नहीं है, कुछ भी ना सोचते हुए जितना भी हमारे बस में इतनी क्षमता है, हमारे पास इतने हम सक्षम है, वो सबके साथ में हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए। अच्छे समय में जब सब कुछ ठीक है, मन भी ठीक है, शरीर भी ठीक है, सब कुछ समय भी है, नींद भी पूरी हो चुकी है, तो शायद हम कर सकते हैं सेवा। लेकिन नींद भी पूरी नहीं हुई है, बीमार शरीर है, घर में बच्चा बीमार है, और कुछ परेशानियां हैं, जॉब है, सब कुछ करते हुए भी हम सेवा करते हैं, तो जितना कठिनाइयां होती है, जितनी कठिनाई में हम सेवा करते हैं उतनी भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर आकर्षित हो जाती है। सेवा में सतत्य होना चाहिए, यानी कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन सेवा किया फिर बाद में 8 दिन सेवा नहीं किया, 3 महीने सेवा किया बाद में 1 साल छुट्टी ले लिया। रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी, यानी कि विश्वास होना चाहिए कि इस व्यक्ति को सेवा दिया तो पूरा हो जाएगी। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ कि भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में अनेक 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 वरिष्ठ वैष्णव अपने आप ही सेवा लेने के लिए चले आते हैं। उस समय पर सेवा करने के लिए बहुत लोगों की कमी होती है और कभी कभी लोग बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन अच्छी तरह से जैसे बताया गया है, रिलायबल तरीके से, विश्वासपूर्वक तरीके से और सातत्य से कंटिन्यूअसली वैसे वक्त नहीं मिलते, इसलिए मैं ये बातें बता रहा हूं यहां पर। और सेवा करते हुए निस्वार्थ भाव सेवा करना चाहिए, क्योंकि कोई मेरी सराहना करेगा, कोई थैंक यू बोलेगा मुझे, कोई मुझे गिफ्ट देगा, कोई बर्थडे को फोन करेगा, किसी भी तरह से कोई भी उस सेवा के फल के रूप में कुछ प्राप्त हो जाए, तो धन्यवाद मिले, इस भाव से नहीं करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। और कभी कभी लोग क्या करते हैं, जब कोई बड़े महाराज जी आते हैं, जयप्रताप महाराज जी, राधानाथ जी महाराज जी, गिरिराज महाराज जी, सब बहुत सारे भक्त सेवा के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, वो सेवा कभी कभी होती भी नहीं, उनकी सेवा के लिए इच्छित रहते। सेवा ऐसी करनी चाहिए कि चाहे वो प्रसिद्ध भक्त हो, वरिष्ठ भक्त हो, चाहे छोटा सा भक्त हो, साउथ अफ्रीका से आया हो किसी गांव से, भक्त तो भक्ति होता है। और उस समय जो सेवा करते हैं उनकी सेवा इंपॉर्टेंट होती है। जब किसी सेवा करने से कोई नाम नहीं होगा और हमने उनके लिए फुल्का बनाया, हमने उनके लिए मिठाई बनाया, हमारे हाथ से बनाया हुआ खाया, उन्होंने खाया, इस प्रकार से चर्चा करने का भी वहां पर मौका नहीं होगा। ऐसी प्रकार की स्थिति में हमको सेवा करने में आपको लेना चाहिए। जब सेवा करने के लिए कोई नहीं होता है उस समय सेवा करने के लिए उपस्थित होना चाहिए, वो सेवा भाव जो भगवान को बड़ा पसंद है, तो सबसे न्यून है, सबसे नम्र है, सबसे समर्पित भावना में है, वो सबसे अधिक भगवान का ध्यान हमारी ओर आकर्षित कर लेता है। और एक प्रकार की सेवा होती है जो त्याग से होती है, समय का त्याग, पैसे का, अपने ऐशो आराम का, अपनी सेहत का भी त्याग करके वो सेवा करते हैं, भगवान उससे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और कभी कभी सेवा के लिए अनुकूल स्थिति होती है, सेवा के लिए प्रतिकूल स्थिति होती है, इन दोनों स्थितियों में एक ही भाव से सेवा करना भगवान के लिए बड़े प्रसन्न की बात है। और आखिर बात यह है कि भगवान के भक्तों की सेवा करते हुए उनकी जाति, उनका वर्ण, उनकी भाषा, उनका स्थिति, धन की स्थिति, रूप की स्थिति, शरीर की स्थिति, ये किसी को देखना नहीं चाहिए। भक्त जो भगवान आनंद और चांडाल भी हो जाए, चांडाल भी हो तो भी भगवान के लिए अति प्रिय होता है। शास्त्र में अनंत उदाहरण है इसके, कि चांडाल भी जब भगवान का नाम लेता है तो वो परम वैष्णव बन जाता है, भगवान उसके लिए अपना प्रेम देते हैं। इसलिए जब हम भक्तों की सेवा करते हैं कोई प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये साउथ अफ्रीकन सन्यासी है, ये अमेरिकन सन्यासी है, ये भारत के वैष्णव कुल के, ब्राह्मण कुल के सन्यासी है, किसी प्रकार का भेदभाव न करते हुए सेवा करना चाहिए। और आखिर में जब सेवा की जरूरत है तब करनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, सन्यासी के भी चलो भक्त महाराज जी को सेवा दो, सेवा दो, सेवा दो, उनकी तब सेवा करनी चाहिए। कभी 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 जब सेवा की जरूरत नहीं होती तभी भी सेवा करने की मांग करना मतलब उनके लिए बर्डन होता है, या इसको कैसे शांत करूं मैं, तो सेवा चाहते चलो एक पड़ा एक कपड़ा यहां से वहां रख दो, ऐसा बर्डन में नहीं करना चाहिए। अपनी सेवा से जिसकी सेवा कर रहे हैं उन्हें किसी प्रकार का बोझ नहीं होना चाहिए, हम किसी प्रकार का उन पर बोझ नहीं बनना चाहिए अपनी सेवा की प्रवृत्ति के कारण। सेवा तब करनी चाहिए जब उसकी जरूरत हो, जब वो कहते हैं कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दवा दो, मेरा टेस्ट करो, मुझे ये प्रकार का खाना चाहिए, वो खाना खिलाओ, मुझे रहने की व्यवस्था करो, मुझे ये हो, उस समय उनकी इच्छा के अनुसार पर्याप्त मात्रा में उनकी सेवा करनी चाहिए। और जब भगवान के भक्त जो है जब मदद की मांग करते हैं कभी उनको सेवा करना कभी झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब कोई भगवान का भक्त हमसे मदद की मांग करता है मतलब साक्षात भगवान हमसे सेवा मांग रहे हैं। भक्त के माध्यम से जैसे बरसाने के पुकार से लोग अंधे हो जाते हैं तो उस बहाने भगवान को सेवा देते हैं, राधा रानी सेवा देती है। इसी प्रकार से जब भक्त कोई हमसे किसी प्रकार की याचना करता है, कभी भक्त याचना भी नहीं करते, उनकी स्थिति को देखते हुए उनकी जरूरत को देखकर आपको उनको मदद करना चाहिए। जब ऐसा गहरा और विस्तार रूप में हमारा सेवा होता है तो भगवान की कृपा हम पर अनंत रूप में अनंत काल के लिए बनी रहती है। फॉर ऑल द टाइम द मर्सी इज ऑलवेज विद अस। और आखिर में मैं दोहराना चाहूंगा कि वैष्णव सेवा का मूल तत्व और सिद्धांत यह है कि वैष्णव को हम प्रसन्न करें। जब वैष्णव हमसे प्रसन्न हो जाए उनकी प्रसन्नता में भगवान की कृपा समाविष्ट है, उसी से हमारा जीवन जो है परिपूर्ण हो जाता है। उसी से भगवान के नाम के जप में रुचि उत्पन्न होती है, उसी से वासुदेव कथा यानी भगवान की कथा हरि कथा के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता है, उसी के प्रति भगवान के हमारा प्रेम भक्ति का जो आदान प्रदान है उसकी वृद्धि होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबको जीवन में अनंत मात्रा में वैष्णव की सेवा प्राप्त हो और आपकी सेवा से वैष्णव प्रसन्न हो जाए और उससे भगवान की सेवा आपको प्राप्त हो जाए, ये शुभकामना के साथ में हरे कृष्णा और धन्यवाद।